देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि तक चला जाता है, फिर जहां का तहां। कर्ण लब्धि में बहुत कम लोग जाते हैं। पांच लब्धियां होती है ना सम्यक्त प्राप्त करते समय, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और अंत में कर्ण लब्धि। फिर भी आचार्यों ने कहा है कि यदि सुनते समय भी आप भाव विभोर हो जाएं, बाद में भले वो भाव स्थिर न रह पाए, आप जगन्य श्रोता नहीं है, मध्यम श्रोता है। सुनने के बाद अगर वो चीज स्थिर रहे अंदर तो उत्तम श्रोता है, और सुनते समय भाव विभोर हो जाए तो मध्यम श्रोता है, और बार बार सुनने पर भी पक्का घड़ा तो फिर सुन रहा है इसलिए नाम मात्र का श्रोता जरूर है, पर कोई काम का नहीं है वो सुनना। कुछ लोग सुनाने के लिए सुनते हैं कि कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, महाराज जी कुछ अच्छे पढ़े लिखे हैं तो कुछ बताते हैं अलग अलग ग्रंथों से, मजा आएगा, चलो नोट कर लो, और कहीं मौका पड़ेगा तो अपन भी जा करके सुनाएंगे। ये सिर्फ विडंबना मात्र है। धर्म श्रवण हमेशा आत्महित के लिए करना चाहिए, दूसरों पर इंप्रेशन जमाने के लिए। जो यहां से पॉइंट से इकट्ठे करके जाता है वो टाइम वेस्ट करता है, समय की बर्बादी के सिवाय उसको कुछ हाथ नहीं लगने वाला, बल्कि उसको और नुकसान भी हो सकता है। यदि मान लो कहीं उसकी प्रशंसा हो गई ये बातें सुनाने पर, तो फिर उसको मान कषाय आ सकती है, हो सकता है वो ये छुपा दे कि मैं कहां से लेकर के आया हूं, और वो अपनी सील लगा करके दूसरे का माल वहां दे दे मार्केट में, तो उससे उसको और भयंकर पाप का बंध हो सकता है, आश्रय हो सकता है। इसलिए इन सब बातों पर विचार करते हुए अनुप्रेक्षा का बार बार स्मरण और चिंतन करते रहना चाहिए। तो जिस शरीर में प्रेम करने लायक एक परमाणु भी नहीं है, उसके प्रति आसक्त होकर के जीव दास का दास बन जाता है, ये कितनी बड़ी विडंबना है। कैसा है शरीर कि इसकी संगति मात्र से श्रेष्ठ वस्तुएं घृणित बन जाती है, पेट में जाने के बाद नहीं। आप लड्डू खाइए और क्षण मात्र में मुंह खोलकर आईने में देखिए, ये एक प्रयोग है। शरीर की संगति से क्या परिणाम निकलता है इसका एक प्रयोग आप खुद करके देख सकते हैं। लड्डू खाइए या फिर नमकीन, अगर जिसको पसंद हो, खट्टी चीज पसंद हो वो खा लेना, कोई अपनी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भी आपकी मन पसंद वस्तु हो उसको खाइए आप, और खाने के बाद थोड़ी देर चबा कर गले के नीचे मत ले जाइए, सिर्फ एक क्षण के लिए आप मुंह खोलकर आईने में देखिए। अब उतरेगा गले के नीचे, क्या हो गया? यानी ये अशुचित्व अनुप्रेक्षा का चिंतन करने पर हमारे गुरुजी ने एक दिन कहा था सन 86 में कि शरीर की अशुचिता का चिंतन करने के बाद अंदर ये भावना जागृत होती है कि जो सिद्ध स्वरूपी आत्मा है, जिसका स्वरूप शुद्धतम है, वो इतनी अशुद्ध कुटिया में कैसे कैद है? एकदम अंदर एक पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए कि नहीं, इस बंधन से मुझे छुड़ाना है। शुद्धतम वस्तु अशुद्धतम पिंजरे में हो, और मनोहर वर्णी जी कहते थे कि शरीर अशुद्धतम है लेकिन शरीर से जोड़ने वाला मोह कितना खराब होगा। जिसने इतने खराब शरीर के साथ जीव को बांध दिया वो खुद कितना खराब होगा। तो मोह सबसे खराब हो गया, शरीर से भी ज्यादा खराब मोह हो गया। फिर आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन किया, खिड़की दरवाजे खुले हो तो बाहर से मिट्टी और कचरा भीतर आ सकता है, और अपने पांच दरवाजे खुले रहते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। सम्यक्त से मिथ्यात्व का द्वार बंद कर दो, व्रतों से अविरति को बंद कर दो, निष्प्रमाद भाव से, सावधानी से प्रमाद का द्वार बंद कर दो, और निष्कषाय भाव से कषायों को जीत लो, और गुप्तियों से योगों का निरोध कर लो। बस आश्रव के बाद संवर अनुप्रेक्षा में यही प्रक्रिया है, कैसे रोकना, इन द्वारों को कैसे बंद करना। फिर निर्जरानुप्रेक्षा, द्वार तो बंद कर दिए, बाहर से कुछ अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर कुछ कचरा है उसको निकाल दो, मोरी से बाहर इकट्ठा करके पैकेट बना करके बाहर फेंक दो। छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट कैसे बनाते हो, अपनी तपस्या या फिर साधना पर निर्भर करता है। उपसर्गों को जीतो तो बहुत बड़े बड़े पैकेट्स बाहर फेंक जाते हैं, कर्मों के असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा बहुत सारे कर्म बाहर चले जाते हैं। तो ये अपने हाथ में है, सफाई करना अपना काम है, कोई दूसरा आकर के यहां अपने कमरे में झाड़ू नहीं लगाने वाला, अपने को ही लगाना है। वो आपको याद है, इस दिन एक बच्ची ने गाया था गीत, मन मंदिर में बावरे झाड़ू रोज लगाया कर। तो ये प्रक्रिया है इसकी, निर्जरा। और निर्जरा के पश्चात अब लोक अनुप्रेक्षा का वर्णन है। लोक कितना विशाल है, अकृत्रिम है, कोई इसका कर्ता, भर्ता और हर्ता नहीं है। और इस लोक में अनेक प्रकार के जीव हैं जो चार गतियों में भटक रहे हैं, और उन जीवों में कितने भेद प्रभेद हैं उनकी चर्चा भी अभी अपन ने सुनी थी। 98 प्रकार के जीव है चार गतियों के, 85 प्रकार के त्रियंश हैं, 9 प्रकार के मनुष्य हैं, 2 प्रकार के देव हैं और 2 प्रकार के नारक हैं। निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक की अपेक्षा 2 प्रकार के। वैसे उनके और प्रभेद देखेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा विस्तार है। ये जीव सिद्धांत बहुत गहन है, कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत दोनों बराबर महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं है। और सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद अगर अपन परमागम का अध्ययन करें, अध्यात्म का, तो उसका सार पकड़ में आता है। वरना समय पाहुड़ ग्रंथ का आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि संयम लब्धि स्थान क्या है, तो फिर आप ये पढ़ तो लेंगे कि ये संयम लब्धि स्थान जीव के नहीं होते, लेकिन वो है क्या चीज यही नहीं पता। नहीं होते इतना पढ़ लिया आपने, लेकिन वो है क्या? संयम लब्धि स्थान किसको कहते हैं? अथवा उसमें ये भी कहा, अध्यात्म स्थान भी जीव के नहीं होते, वर्ण आदि भी जीव के नहीं होते, गुणस्थान भी निश्चय से जीव के नहीं होते, मार्गणाएं नहीं होती, अध्यवसान जीव के नहीं होते, रागादिक भी जीव के नहीं होते निश्चय से। अब ये जितनी चीजें नहीं होती जीव की, वो अगर अपने को पता ना हो तो फिर कैसे समझेंगे? इसलिए अध्यात्म को समझने के लिए आगम का अभ्यास अपेक्षित है। तो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बहुत सुंदर वर्णन है इनका, और तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास करो तो भी बहुत कुछ समझ में आता है। वरना जीव कांड और कर्म कांड ऐसे दो ग्रंथ हैं, गोमट सार के दो भेद हैं। आगाज से आपको जीव कांड कर्म कांड की जो छोटी प्रति है, छोटा संस्करण, वो मिल सकता है, और उसका स्वाध्याय करने से छोटे से, इससे भी छोटे हैं, आकार में, और उसका आप अध्ययन करोगे तो उस अध्ययन में आपको जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत का मोटा मोटा अभ्यास हो जाएगा। बहुत जरूरी है। एक घटना बताते हैं हम आपको। पंडित बनारसी दास जी लगभग 400 वर्ष पहले समयसार पढ़ करके अपने कुछ विद्वान मित्रों के साथ एक कक्ष में, श्वेतांबर जैन थे पहले, एक कक्ष में वस्त्र उतार कर दिगंबर जैन मुनि के समान ऐसे बैठ गए, समयसार का शुद्ध आत्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए बैठे रहे। काफी प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो आनंद रस आया नहीं। फिर उनको लगा कि कहीं विधि गलत हो रही है। क्या होता है कि कभी कोई सफलता न मिले तो कभी भी अपने आप को असफल मानकर निराश नहीं होना। बहुत महत्व की बात है ये कि कभी भी कोई असफलता मिलने पर, कोई कार्य पूर्ण न होने पर निराश नहीं होना। अपने आप को असफल मान करके निराश नहीं होना कि अरे नहीं, मेरे से हो ही नहीं सकता, गलत बात। फिर क्या करना, जिस विधि से आपने वो कार्य सिद्ध करना चाहा उस विधि को बदल देना। यदि दूसरी विधि भी निष्फल हो तो भी निराश नहीं होना, तो भी ये मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा काम। नहीं, ऐसा सोचना सबसे बड़ी असफलता है। जब तक आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, भले सफलता नहीं मिल रही है, तब तक आप असफल नहीं माने जाएंगे। और जिस दिन आप पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, उस दिन आपसे बड़ा असफल कोई दूसरा नहीं हो सकता। बार बार विधि बदलते जाओ, विधि बदलते जाओ, विधि बदलते जाओ। अपने को लगता है कि अपन विधि बदल कर काम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। जैसे शांति प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करने के लिए आपने एक विधि अपनाई कि कुछ बढ़िया चीजें खा ली जाए। खा लिया, क्षणिक स्वाद आया, दो क्षण के लिए बस एक रस मिला, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति नहीं हुई यानी अंदर संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर आपको लगा कि भाई इस विधि से तो जो चाहता था वो नहीं हुआ, तो अब विधि बदले। तो विधि बदलने के लिए आपने क्या किया, टेलीविजन का सहारा ले लिया। अब 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे टेलीविजन देखने के बाद ऐसी हालत हो गई कि भाई अब तो चलो सो जाओ। तो टेलीविजन देखने के बाद भी वो तसल्ली नहीं हुई जो अपेक्षित थी, अंदर जो कल्पना में थी कि भाई कुछ ऐसा मिले कि जो बस मजा आ जाए, उसके बाद फिर संतुष्ट हो जाए, दिल खुश हो जाए, वैसा नहीं हुआ। सोकर उठे और जो कुछ भी किया जीवन भर, हर जगह वही निराशा हाथ लगी, वही अतृप्ति हाथ लगी। तो ऐसा मान लिया कि भाई मुझे नहीं मिल सकता वो जो मैं चाह रहा हूं, मेरे नसीब में नहीं है। ये सोचना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आत्मा के आनंद पर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी दूसरे का तो छोड़ो आप, अपना तो अपने गुणों पर पूर्ण अधिकार है। फिर इस तरह निराश होना तो व्यर्थ है। विधि बदलने का मतलब क्या है कि आपने जिस दिशा में पुरुषार्थ किया था वो दिशा गलत थी, ये निर्णीत कर लो। आपने जिस सुख शांति को बाहर खोजा था वो बाहर नहीं थी, इसलिए आप एक जगह खोजो या 10 जगह खोजो, खोजने की दिशा तो एक ही है ना, इसलिए विधि कहां बदली, विधि तो वही रही। साधन बदल दिए, विधि तो वही रखी। अब क्या करना कि जब वहां नहीं मिल रहा सुख, वहां शांति नहीं मिल रही, तो शांति को कहीं और खोजना पड़ेगा। बाहर नहीं मिली, एक बार अंदर खोज ले। एक दादी माँ सुई ढूंढ रही थी अंधेरे में, तो किसी लड़के ने बोला कि माँ जी अंधेरे में कहाँ मिलेगी सुई, उजाले में मिलेगी। तो वो स्ट्रीट लाइट जो जल रही थी ना, वहां नीचे जाकर ढूंढने लगी। आधे घंटे बाद वो लड़का आकर के बोलता है, माँ जी क्या ढूंढ रही। बोले कि तूने ही तो बोला था कि उजाले में मिलेगी। तब फिर लड़का बोलता है कि माँ जी क्या हो गया आपको, मैंने जो कहा था उसका भाव आपने नहीं समझा। मैंने ये कहा था कि सुई जहां गुमी है वहां उजाले में ढूंढो तो मिलेगी। एक सुई जहां गुमी है वहां अंधेरा हो तो सुई नहीं मिलेगी, और सुई जहां नहीं गुमी है वहां उजाला हो तो सुई नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी? जहां है वहां प्रकाश करो तो मिल जाए। उसी प्रकार सुख आनंद और शांति आत्मा के गुण हैं। इनकी खोज आत्मा में प्रकाश करके की जाए तो ये मिल सकते हैं। बाहर प्रकाश करके ढूंढोगे तो बाहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो है नहीं वहां। और बाहर अंधेरे में ढूंढोगे या अंदर अंधेरे में ढूंढोगे तो भी मिलना नहीं। तो विधि गलत हुई कि नहीं हुई? निश्चित रूप से गलत हुई। इसलिए इसको सुधारना है। प्रक्रिया सही हो जाए तो क्या मजाल है कि सफलता न मिले। क्यों नहीं मिलेगी? भोजन में भी यही होता है। कितनी बार जलते हैं रोटी बनाना जब सीखते हैं लोग। ऐसा कौन है जो जला ना हो भोजन बनाते समय? कभी ना कभी तो ऐसे या तो तलते समय छींटे आ जाते हैं, हाथ में निशान पड़ जाते हैं। कभी कभी माताएं आहार देती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जला हुआ है इनके। तो अनुमान से ये समझ में आता है कि वो क्या जला, कैसे जला होगा वो, सिवाय रसोई घर के और क्या हो सकता है उसका कारण। तो जलना तो पड़ता है, थोड़ी ठोकरें लगती है, कई बार घुटने टूटते हैं साइकिल सीखते समय, लेकिन जब सीख जाता है फिर कभी कोई मेजर एक्सीडेंट हो तो वो बात अलग है। वैसे ही जो इस मार्ग पर चलना सीख जाता है, अभी तो भ्रांति ये होती है कि अपन बाहर से कुछ करते हैं और लगता है कि मुझे अंदर से वो सब गति प्राप्त हो गई है, ये सबसे बड़ी भूल है। कुछ शास्त्र पढ़ लिए तो लगता है कि मैं तो अब बिल्कुल उसकी गहनता में चला गया और अध्यात्म की ऊंचाइयों का मैंने स्पर्श कर लिया, ऐसा भ्रम होता है। देखो ये पहचान है, धर्म मार्ग पर मैं सही चल रहा हूं या गलत, इसकी एक पहचान बताएं हम आपको। अभी आप लोग चलें ऐसी हमारी भावना है, अभी तो खैर रुके हुए हैं। जब तक संयम नहीं है तब तक के गति नहीं है। जब भी चलो उसकी पहचान ये है कि यदि आपको ये लगे कि मैं पहुंचा हुआ हूं तो इससे सिद्ध हो गया कि पहुंचे हुए नहीं है। ये एक खास पहचान है उसकी। यदि आपको लगे कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं तो निश्चित समझना आप जहां के तहां हैं। जो आगे बढ़ जाता है उसको लगता है कि अभी तो बहुत दूर चलना है मुझे। जितने जितने आगे बढ़ते हैं उतना उतना दूर दिखाई देती है वो मोक्ष रूपी मंजिल। ऐसी अलौकिक निधि है वो मोक्ष मुक्ति। एक एक कदम आगे बढ़ाओ। यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञान चेष्टितं उत्तरोत्तर विज्ञानाद् योगिनः प्रतिभासते। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि योगी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनको लगता है कि कल तक तो मैं भूल कर रहा था, अब कुछ सही चीज मालूम पड़ रही है। फिर अगले दिन जब और साधना आगे बढ़ती है तब लगता है कि वो जो कल किया था उसमें भी त्रुटियां थी, अभी तो मुझे और आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनको पिछला सब अज्ञान चेष्टितम प्रतिभासते। अज्ञान ही प्रतिभासित होता है। उनको ये लगता है कि अब तक जो कुछ चल रहा था सब अज्ञानता थी, और अंत में जब केवल ज्ञान होता है तब लगता है कि अब तक जो कुछ था वो भी अज्ञान था, मिथ्या ज्ञान नहीं था लेकिन अधूरा ज्ञान। अधूरे ज्ञान को ज्ञान कैसे कहें? इसीलिए तो तीर्थंकर भगवान शुद्ध केवली होने के बावजूद, सर्वावधि ज्ञान के धारक होने के बाद भी और विपुलमति मनः परे ज्ञान होने पर भी, जो कि असंख्यात भवों को जान सकते हैं। आपने असंख्यात भव पहले मन में क्या विचार किया? इतना जानने की जिनके अंदर क्षमता होती है वो भी केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक मौन धारण करते हैं दिगंबर शास्त्रों के अनुसार, बात नहीं करते नेमिनाथ भगवान राजुल से बात नहीं करते दिगंबर मत के अनुसार, कोई संबोधन नहीं कोई वार्तालाप नहीं, अखंड मौन रखते हैं वो। अधूरे ज्ञान के साथ क्या बोलना। और यहां तो समस्या ये है कि अधजल गगरी छलकत जावे, वो रुकता ही नहीं है, अंदर मौन रहना मुश्किल है, वहां उनको बोलना मुश्किल है तीर्थंकर भगवान को, कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक क्या किससे बोलना क्या बोलना। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। मौन कैसे धारण करते हैं वो, कितना सुंदर आध्यात्मिक पद है ये। आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में कह रहे हैं कि जो दिखता है वो देखता नहीं है, जो देखता है वो दिखता नहीं है, फिर बोलने का पचड़ा क्यों, किससे बात करूं। मैं सोच रहा हूं कि इससे बात कर रहा हूं, ये जो दिख रहा है वो नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी जीव से बोलना चाह रहा हूं और वो नजर नहीं आता। ये आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो तो पुद्गल है, फिर किससे बात करना। यद बोधयितुम इच्छामि तन्नाहम यदहम पुनः ग्राह्यं तदपि नान्यस्य तत्किं किम अन्यस्य बोधे। फिर सोचते हैं कि मेरे शब्दों से किसी को कोई बात समझ में तो आएगी, वो भी अपना कल्याण करेगा, तो उस समय विचार करते हैं कि ऐसा सोच करके भी मौन भंग नहीं करना। क्यों, वो वस्तु शब्दों से परे है। समझ में आ रहा है आपको कि मैं जो कुछ भी समझाना चाहता हूं शब्दों के द्वारा, वो शब्दों से बहुत ऊंची वस्तु है। फिर मैं क्या समझाऊं। मौन धारण कर लेते, मौन धारण करने की इतनी सुंदर साधना दी है समाधि तंत्र ग्रंथ में। एक बार वर्णी जी से किसी ने पूछा था, बड़े वर्णी जी से, कि संलेखना का समय निकट है, मुझे क्या स्वाध्याय करना चाहिए। तब उन्होंने बोला था कि अध्यात्म में समाधि तंत्र और भक्ति में सहस्र नाम स्तोत्र, बाकी कुछ नहीं करना तुमको। सिर्फ मतलब मृत्यु का समय निकट है, अब ज्यादा क्या पढ़ोगे तुम, सिर्फ समाधि तंत्र को रखो और सहस्त्र नाम का पाठ करते रहो। सहस्त्र नाम यदि न जमे तो फिर उपलक्षण समझ करके फिर और भी भगवान की कोई भी स्तुति ले लो, कल्याण मंदिर है और भी बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं, उनका स्वाध्याय कर लो। तो अब इसके आगे का स्वाध्याय अपन लोकानुप्रेक्षा का फिर करेंगे। आज थोड़ा आध्यात्मिक उपदेश बीच में हमने ले लिया। संख्या बता रहे हैं जीवों की, तेजस का एक जीव, वायु का एक जीव की संख्या यदि वो बादर पर्याप्त तक हों तो 147वीं गाथा में बतलाई, फिर 148वीं गाथा में पृथ्वी और जल का एक जीव, पृथ्वी तोय शरीर पत्तेया पैठिया इरा, फिर प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की, प्रतिष्ठित और इतर यानी अप्रतिष्ठित। तो ये सारे जीव जो होते हैं, पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, बादर पर्याप्त तक लगा लेना, फिर प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति में प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ये सब असंख्या सीढ़ी होती, असंख्यात श्रेणी प्रमाण होते हैं। श्रेणी यानी सात राज्यों के आकाश प्रदेशों वाली पंक्ति, मतलब आकाश के एक एक प्रदेश को ऐसे एक लाइन में बनाते जाओ, जोड़ते जाओ,
तो सात राजू तक जितने आकाश के प्रदेश आएंगे एक सीधी रेखा में, उसको एक श्रेणी प्रमाण कहते हैं, असंख्यात श्रेणी प्रमाण। असंख्यात श्रेणी का मतलब यहां पर को गुणगारो, मतलब कौन से असंख्यात से गुणित करोगे उन असंख्यात प्रदेशों को जो सात राज्यों में है, तो उसके बराबर असंख्यात प्रदेश नहीं लेना, नहीं तो वो प्रतर हो जाएगा। श्रेणी का जो वर्ग होता है वो प्रतर कहलाता है, और श्रेणी का जो घन होता है वो लोक कहलाता है। सात राजू के प्रदेशों की जो पंक्ति है उसमें सात राजू के प्रदेशों का गुना कर देंगे तो फिर वो एक प्रतर कहलाएगा, जगत प्रतर। ये जगत श्रेणी है, जगत प्रतर बन जाएगा, और फिर उसमें फिर सात राजू के प्रदेशों की गिनती गुणित कर देंगे तो फिर वो लोक बन जाएगा। तो सात गुणित सात गुणित सात कितना हुए, सात गुणित सात कितने हुए, 49, 49। और फिर उसको फिर गुणित कर दो आप सात से, 343। तो लोक का जो परिमाण है वो 343 राजू है। तो उसमें जितने प्रदेश होते हैं वो घन श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ क्या लेना, असंख्यात श्रेणी लेना। अब असंख्यात श्रेणी का मतलब ये नहीं कि उसमें जितने असंख्यात प्रदेश हैं उनको उतनी बार गुणित कर देना, वैसा नहीं है। असंख्यात मतलब असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, तो एक उसमें एक निश्चित परिमाण लेना पड़ता है जिसका आगम में उल्लेख है, और उसके साथ गुणित कर दो तो जितनी राशि आती है उतनी राशि इन चार प्रकार के जीवों की होती है। कौन से, पृथ्वी का एक जीव, तोए, तोए का मतलब जल, जल का एक जीव, फिर प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये वनस्पति के भेद हैं। पांच स्थावर हो गए, फिर पुण्णा पुण्णा या तह या तसा, इसी प्रकार पर्याप्तक और अपर्याप्तक त्रस जीव भी होते हैं। फिर त्रस ले लें, और इन सब में पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे दो भेद बनाना पड़ेंगे। पृथ्वी काय का जीवा एक, तो एकाय का जीवा दो, प्रत्येका प्रत्येक वनस्पति काय का जीवा तीन, अपिच और प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काय का जीवा इतरे, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काय का जीवा इति सर्वेपि पूर्णा पूर्णाश्च पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च दस, इति दश प्रकारा, ये दस प्रकार हैं। प्रत्येकम असंख्यात श्रेणी मात्रा, असंख्यात श्रेणी मात्र है, ये असंख्यात का चिन्ह बनाया टीका में। श्रेणी एक आड़ी लीटी है, लकीर है, और उसके आगे जो चिन्ह बना हुआ है वो असंख्यात का चिन्ह है। जिनके पास किताबें हों वो देख सकते हैं, लेकिन वो बड़ी प्रति में ही मिलेगी आपको। तह या तसा तथा च त्रसाह पर्याप्त अपर्याप्ताश्च, त्रस भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों प्रकार के, इति दश प्रकार, ये दसों प्रकार के जो जीव हैं, द्वि त्रि चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय संजनी संजनी भेदात सैनी और असैनी, इति पे असंख्यात श्रेणी मात्र, ये सब असंख्यात श्रेणी प्रमाण होते हैं। बादर लद्दि अपुन्ना असंखलोया हवन्ति पत्तेया, तहय अपुन्ना सुहुमा पुन्नाविय संख गुण गुणिया। गुणिया है कि गणिया है, उसमें गुणिया है ना, एक मिनट छाया देखो, संस्कृत छाया में क्या दिया, गुण गणिता, वैसे अर्थ एक ही निकलेगा, कितना रहते हैं, बादर लब्धि अपर्याप्तक, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं और प्रत्येक वनस्पति नहीं पत्ते या माने एक एक बादर लब्धि अपर्याप्तक जो है ना, एक इंद्रिय संबंधी बादर नहीं त्रस में बनाएंगे, बादर लब्धि अपर्याप्त उनके द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय सैनी असैनी ये सब के सब असंख्यात लोक प्रमाण हो गए। तह अपुण्णा सुहमा, उसी प्रकार अपर्याप्तक जो सूक्ष्म है, ये तो बादर की बात हो गई थी, अब सूक्ष्म की जो बात है वो भी तह उसी प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण है। पुण्णा भी संख गुण गुणिया और पर्याप्तक जो है वो संख्यात गुण से गणित है।